ओम शांति। बाप दादा के अमूल्य रतन, सदा भगवान की नजरों में रहने वाले बेहद अथक सेवाधारी आदरणीय प्राता रामनाथ भाई जी हम सबके बीच में उपस्थित हैं। भ्राता जी आपका इस सभा में बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। आपने इस ईश्वरीय ज्ञान को कर्नाटक में विद्यार्थी काल में होते हुए 1972 में इस राज्य का अभ्यास अपने जीवन में प्राप्त किया हुआ है। 1978 में आपने मधुबन तपोभूमि देह सेवा में आपने अपनी जीवन समर्पित की हुई है। आपने देश विदेश के अंदर भी यात्रा करके बाबा का ईश्वरीय संदेश अनेक आत्माओं तक पहुंचाया है, उसकी दुआएं आपके पास प्राप्त है। आप धार्मिक विंग के हेडक्वार्टर कोऑर्डिनेटर हैं। तो ऐसे बाबा के अमूल्य रतन आदरणीय भ्राता रामनाथ भाई आज हमें साथी और साक्षी दृष्टा उस पर प्रकाश डालेंगे। आदरणीय भ्राता रामनाथ भाई जी, क्लास शुरू होने से पहले एक छोटी सी कुमारी को चलाइए, उसका नाम है कुमारी पारखी, दिल्ली जोन से आई है। अभी मैं निवेदन करूंगी, वो हम सबके बीच में एक डांस प्रस्तुत करेंगी। गीत के बोल है मेरे प्यारे चंदा मामा, कुमारी पारखी। बहुत बहुत धन्यवाद कुमारी पारखी। अभी अभी रामनाथ भाई जी ने उससे जो भी प्रश्न पूछे, इस कुमारी ने इतने अच्छे ढंग से सही जवाब दिए, इतने हम लोग खुश हो गए कि सच्ची इतनी छोटी है लेकिन कोई इसी यज्ञ की आत्मा हो। सब जवाब जो भी रामनाथ जी ने प्रश्न पूछे इतने अच्छी तरह से जवाब दिया। पहले पूछा कि दादी के तन में कौन आया था, कहाँ बैठी थी दादी, बोले सनली पर। कौन सी दादी थी, बोला गुलजार दादी। उसके तन में कौन कौन आया था, तो बोला शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा। तो ऐसे और भी प्रश्न पूछे, तुम्हारी आत्मा कहाँ रहती है, वो भी सही जवाब दिया। शिव बाबा कहाँ रहता है, वो भी सही जवाब दिया। तो भोग लगा
जब ने दिया, उड़ के जाओ कहा था।
एक जवाब सिर्फ नहीं दिया, बोला कि तुम उड़ के जा सकती, बोले नहीं हम नहीं जा सकती, मेरे को पंखा है जो मैं उड़ के जाऊँ।
हाँ वो जवाब बताओ बताओ, फोन ना रख, बताओ मैं उड़ जा सकती कहती है अभी।
बस आत्मा उड़ के जा सकती
है। मैं ताली बजा दो। अभी भाई साहब का क्लास नहीं।
बच्चे भी होशियार होते हैं ना। ओम शांति। आज का विषय है कि एक है साथी और साक्षी, तो किसको सदा साथ रखना चाहिए। अगर अपने को शरीर समझते हो तो शरीर के जो संबंधी है, बच्चे है, अपनी युगल है, अपने परिवार है, अपने दोस्त है, वो साथ याद आएंगे। अगर शरीर समझते हो तो शरीर नहीं समझते हो, शरीर एक साधन है और मैं कौन, मैं आत्मा हूँ। अगर ये स्मृति में है, क्योंकि ज्ञान सुनने के बाद ऐसा कहते हैं कि सुनना पढ़ना से कोई काम नहीं है। सुन लिया आपने बहुत, पढ़ भी लिया लेकिन समझ में नहीं आया तो एक काम का नहीं है। तो सुनने के बाद, समझने के बाद, पढ़ने के बाद कुछ समझ में आया तो मैं आत्मा हूं, ये अगर समझ में है तो मेरा कौन है इस संसार में। आप पूछ ले एक दिन, इस संसार में मेरा कौन है। धन है, अपनी युगल है, अपने बच्चे है, अपने परिवार है, अपने मकान है, अपनी नौकरी है, अपनी संपत्ति है, क्या है मेरा। शरीर भी आपका है, नहीं वो भी अंतिम में छोड़ देना है। आप एक सेकंड भी शरीर में नहीं रह सकते हो अपनी इच्छा के अनुसार। आपको मेरा शरीर है, मैंने इसको इतना समय खिलाया पिलाया तो मैं एक सेकंड रहता हूं, नहीं तो मेरा भी शरीर नहीं है। इसके लिए बाबा ने अभी बहुत सुंदर जवाब दिया कि मेरा कौन, मेरा एक बाबा है और ये सभी बीमारियों की दवा है, चाहे मानसिक बीमारी हो चाहे शारीरिक बीमारी भी हो। तो मेरा अगर इस जीवन में आप कहते हो तो मेरा कुछ है, तो मेरा तो शुभ बाबा है। लेकिन ये भी स्मृति तब रहती है जब हमको अच्छी तरह स्मृति हो कि शरीर भी मेरा नहीं है। वस्तु वैभव ये सब छोड़ दो, उसके बाद भी नजदीक सबसे है शरीर, मेरा शरीर। हर सेकंड हम कहते हैं तो मेरा शरीर नहीं है, तो मेरा कौन है। तो बाबा ने बहुत अच्छी बात बताई अभी परसों कि सभी बीमारियों की दवा भी है तो मेरा बाबा है, ये याद रखे। तो अभी आप प्रश्न आएगा, आप कहेंगे भाई जी संसार में तो शरीर के द्वारा हर कर्म करेंगे, देखना है, बोलना है, हर कर्म शरीर के द्वारा होता है। तो आप शरीर के द्वारा संसार में इस रंग मंच पर, सृष्टि मंच पर कर्म करते हुए भगवान तो ऊपर रहता है, तो मैं उसको साथ लेके संसार में कैसे चलो। एक है प्रैक्टिकल ज्ञान, एक कहने के लिए ज्ञान है, सिर्फ सुनने तक ठीक है। तब उसको बाबा ने कहा, कल के मुरली में कहा था, दिमागी ज्ञान, दिमाग तक ठीक लग रहा है लेकिन आप उसके ऊपर चल नहीं सकते हो, अनुभव का ज्ञान नहीं है। तो आप अभी बताओ, दिमाग का ज्ञान चाहिए कि अनुभव का चाहिए? हाँ, आप भी कहते अनुभव सुनाओ, है ना, शेयर योर एक्सपीरियंस। नहीं तो ऐसे कहते दुनिया में भी कि सब लोग कहते, सब जगह देखना, वी रीड एंड वी कोट। गांधी जी ने ऐसे कहा, गीता में ऐसे कहा, महाभारत ने ऐसे कहा, लेकिन आप क्या कहते हो वो प्रश्न चाहिए। सबने ऐसे कहा लेकिन आप क्या कहते हो, कोई नहीं कहता, मैं कहता हूं, मेरा अनुभव कहता है, मैंने ऐसा किया, मैं ऐसा कर सकता हूं। क्योंकि हम और आप सामने अभी है, वर्तमान में है, भविष्य में, पास्ट में अलग अलग परिस्थिति थी, तो अभी वर्तमान चाहिए। तो अभी आप बताओ कि आप अब भगवान को साथ लेके संसार में कैसे चलेंगे। माताओं में से, टीचर में से कोई बताओ, छोटी दीदी बताओ। आप शिव बाबा तो परम धाम में रहता है, ब्रह्मा बाबा तो सूक्ष्म तन में रहता है, बाप दादा तो ऊपर है। आप इस संसार में जब चलेंगे तो भगवान को साथ लेके कैसे चल सकते हो। दुनिया में भी लोग कहते हैं कि जिनके साथ भगवान है उसको आंधी तूफान भी कुछ नहीं कर सकता है। ये कहने के लिए, अगर आपको, आप अगर आज संसार में चलते हो, क्या आप भगवान को साथ लेके चल सकते हो? अगर चल सकते हो तो कैसे चलते हो? बुद्धि द्वारा। भगवान तो ऊपर रहता है, आप उसको लेके कैसे चलेंगे? आपके साथ तो नहीं कोई। एक कोई बताओ, एक उठ के बताओ कि आप भगवान को साथ लेके, माताजी बताओ, अनुभव कौन सा अनुभव? ठीक है, और बता रहे, देखो श्रीमत का हाथ लेकर, श्रीमत क्या है वो बाबा का? बहुत है, उसमें से एक श्रीमत आप जो लेके चलते हो वो कौन सा श्रीमत लेके चलते हो आप? मन बुद्धि से। और भाइयों में से कोई बताओ कि आप, क्योंकि थोड़े से है, थोड़ा प्रश्नोत्तर कर सकते हैं ना, नहीं तो भाषण करते रहो, ऐसा है, बहुत सुना आपने, अभी थोड़ा थोड़े है तो प्रश्नोत्तर कर सकते हैं। आप बताओ कि भगवान को साथ, शिव बाबा को सारे दिन में, हर कदम में, संसार में चलते हुए कैसे साथ लेके चलते हो? थोड़ा नजदीक है, और कोई बताएगा? तो यही और ईश्वरीय विश्वविद्यालय में और इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में ब्रह्मा कुमारी आश्रम में नंबर वन राजयोग यही है। और बहुत सालों से बाबा ने बहुत अलग अलग तरीके से बताया है, तो भी अभी देखा हमारे प्रैक्टिकल आचरण में नहीं है। और 108 प्रकार की इसके अंदर प्राप्ति है, तब नाम लिखा जाता है सहज राजयोग। ये कठिन नहीं है, इतना सहज है, कुछ भी नहीं करना है, फिर भी कुछ करना है, और इतना सहज है। आप चलते, बाबा ने कहा, दुनिया में भी लोग कहते हैं कि भगवान को साथ रखे चलो, तो कैसे रखेंगे आप? भगवान तो निराकार है, हम तो साकार में हैं, तो ये दोनों समझ में नहीं आ रहा है। सुनते हैं और बोलते भी हैं, लेकिन प्रैक्टिकल अगर कोई किया हुआ हो, मैं भगवान को साथ लेके चलता हूं, इसलिए मैं पूछा। तो आप में से कोई प्रैक्टिकल बताओ कि मैं रोज लेके चलता, और वही इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में नंबर वन राजयोग है। और इसको बाबा ने बहुत दफा कहा, देखो 2008 के चार की अव्यक्त मुरली है, उस मुरली में बाबा ने कहा 2004 में दिसंबर के महीने में, इसी महीने में, कि बच्चे संसार में रहो, गृहस्थ में रहो, आप 108 की माला में आ सकते हो। कुछ नहीं करना है, सिर्फ एक काम करना है। और फिर दोबारा 2008 के अव्यक्त मूल्य में बताया बाबा ने फिर से, बच्चे 108 की माला में आना चाहते हो आप, ये पहले बताया। दूसरा कहा बाबा ने कि 108 इसमें कि 2008 में कि क्या कहा कि बहुत जन्मों के बोझ है कर्मों का, आप उड़ना चाहते हो, बाबा को याद करना चाहते हो, नहीं कर सकते हो, बहुत जन्मों के बोझ को उतारना चाहते हो तो उसके लिए भी एक ही काम करना है। क्या हो? हर एक को देखते ही दुआ दे दो। आप सबने फॉर्म भी भरा है ना कि दुआएं दे दो। तो दुआएं देने के लिए मैं हम तो दे नहीं सकते हैं, हमारे पास तो कोई शक्ति नहीं है, हम ही पुरुषार्थ करते हैं, हमारे दोनों हाथ भी खाली, जेब भी खाली, कुछ भी नहीं हमारे पास। लेकिन बाबा ने कहा कि बच्चा आपके पास जो कुछ है वो आपके पास रखो, सारे कल्प में काम में आएगा। संगम पर सिर्फ मैं स्वयं बच्चों की सेवा के लिए आता हूं, बच्चों सेवा करते सब मुझे यूज करो, यूज मी, कि सिर्फ संगम पर ही सर्वशक्तियों को लेकर मैं आया हूं। सर्वशक्तिवान क्यों आया हूं, बाबा क्यों आया है, कि बच्चे मेरे से सेवा ले लो, मैं आप बच्चों की सेवा के लिए आया हूं। तो कैसे सेवा लेंगे? और वो यहां राजयोग है, कुछ भी नहीं करना, आप एक ही दिन करके देख लो, और इसके अंदर 108 प्रकार की प्राप्ति, इतना सहज राजयोग है कि आप यहां से रास्ते पर चलते हो, कितने लोग आपको दिखाई देता है, मित्र भी है, दुश्मन भी है, जिसको जानते हो, जिसको नहीं जानते हो, मजदूर भी काम करते हैं, गरीब भी है, करोड़पति भी है, सभी प्रकार के लोग दिखाई देते हैं, वैरायटी। लेकिन उन सबके अंदर जो आत्मा है वो शुभ बाबा का बच्चा है ना, सभी के अंदर, चाहे मजदूर हो, चाहे माता हो, चाहे पिता हो, चाहे दुश्मन हो, कोई भी हो, लेकिन सबके अंदर जो अंदर आत्मा है तो वो शुभ बाबा का बच्चा है। तो किसी पर नजर गई, शुभ बाबा ये आपका बच्चा है, इस बच्चे को आप शांति की शक्ति दे दो। और किसी पर नजर गई, शुभ बाबा ये आपका बच्चा है, इस बच्चे को आप सदा सुखी बनाओ। इतना सहज राजयोग है। बच्चे तब कहा कि थॉट, बाबा ने कहा विचार का प्रभाव, कल मुरली में कहा था, देखना, विचार का प्रभाव, मन का प्रभाव बुद्धि पर पड़ता है, मन बुद्धि दोनों मिलते तो संस्कार बनते हैं। तो इसलिए संसार में चलते समय सभी लोग दिखाई देंगे, काले गोरे लंगड़े, मित्र दुश्मन सभी, लेकिन किसने देखो कपड़े काले पहने हैं, किसने सफेद पहने हैं, किसने और कुछ पहना है, तो हर रंग बिरंगी दुनिया है ये, लेकिन इन सबके अंदर कौन है? आत्मा है। तब पहले कहा अगर आत्मा आपने स्वीकार किया, मैं आत्मा हूं, शरीर नहीं है, तो किसी पर नजर गई, चाहे करोड़पति भी हो, चाहे रोडपति भी हो, किसी पर नजर जाते ही आत्मिक दृष्टि का आत्मा देखती है। आत्मा नहीं तो इन आंखों से नहीं देख सकते हैं, आपकी आंखें काम नहीं करती है, आत्मिक दृष्टि आत्मा चमकता हुआ दिखाई नहीं देती है, देखते ही शुभ बाबा ये आपका बच्चा है। दुआ, शुभ बाबा ने कहा बच्चे मेरे पास सर्वशक्तियां है, किसके लिए ये? कोई मुझे पहचानता नहीं है, आप पहचानते हो, आपने मुझे जाना है, माना है, तो संसार पे चलते हुए हर कदमों में पदमों की कमाई जमा हुई है। कब होगा? पदम पति अगर आपके साथ है तो कदमों में पदम जमा होते हैं, अगर पदम नहीं है, पदम पति नहीं है, तो हर कदम खाली जा रहे हैं, जा तो रहे हैं तो खाली जा रहे हैं। तो हर कदम रखते समय किसी पर नजर गई, किसी को भी देख लो, कोई भी हो, गरीब हो, श्रीमंत हो, तब बाबा ने इस साल होमवर्क दिया था, लास्ट ईयर जब बाबा आए थे, बच्चे आप सारी दुनिया के कोने कोने तक नहीं पहुंच सकते हो, औरों तक आप नहीं पहुंच सकते हो, लेकिन सबकी सेवा करनी चाहिए, और सबसे सुंदर, रिफाइन, पावरफुल, सेवा जो है वो मनसा सेवा है। लेकिन मेरा आवाज यहाँ से यहाँ पहुंचेगा, लेकिन संकल्प मन की शक्ति बहुत तीव्र गति से काम करती है। तो इसके लिए रास्ते पर चलते हुए भी, जैसे भक्ति में भी करते थे, राम 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 करते रहते, इधर उधर देखते भी रहते हैं, है ना, राम राम करते रहते हैं, क्यों मुंह से गलत शब्द निकलना नहीं चाहिए, ठीक था भक्ति लेवल में। लेकिन आध्यात्मिक ज्ञान में आने के बाद, समझने के बाद कि मन में किसी पर नजर गई और ये इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में नंबर वन पवित्रता है, मीरा भी पवित्र रही सत्युग में नहीं आ सकती है, मन की पवित्रता चाहिए। अगर किसी पर नजर गई, चाहे कोई कैसे हो, शास्त्रों में भी कहा, गीता में भी कहा, अधम से अधम महापापी है, बहुत खराब है, फिर भी उस पर नजर गई तो मेरे मन में वो खराब है, मैं कौन, मेरे साथ कौन है, मैं किसका बच्चा हूं। डॉक्टर भी देख लो, ये कहता है बहुत एक्सीडेंट से बिल्कुल सड़ गया, खराब हो गया है, तो भी डॉक्टर नहीं कह सकता मैं ऑपरेशन नहीं कर सकता, हाथ नहीं लगा सकता हूं, 24 घंटा खड़ा होगा, सब प्रकार से कोशिश करेगा उसको जी दान देने के लिए, मेहनत करता है। तो यही हमारा लक्ष्य है, असंभव होपलेस केस को भी होपफुल बना सकते हैं। कितना भी खराब है, अगर हम खराब कहते हैं क्योंकि रुहानी हॉस्पिटल है, खराब व्यक्ति यहाँ आएगा, अच्छा व्यक्ति तो आएगा ना, हॉस्पिटल में अच्छा व्यक्ति आएगा कोई नहीं, तो भगवान भी क्यों आया है कि सारी दुनिया में हर एक उसके बच्चे बीमार है, कोई एक व्यक्ति भी देखो अभी भी इतना भाई बहने बैठे हैं, आप में से एक भी कोई बताओ आज से एक महीने के अंदर एक दिन भी गुस्सा नहीं किया हो, ऐसा कोई व्यक्ति है, आज से एक महीने के अंदर, एक साल भी नहीं है। तो माना आप सब लोग सत्य में जाना नहीं चाहते हो, यहाँ रहना चाहते हो, तो यही अच्छा है, ऐसा कहेंगे ना, एक दिन भी गुस्सा नहीं किया हो तो पांच, क्योंकि बाबा ने लास्ट ईयर कहा था कि बच्चे गुस्सा स्वयं को भी जलाता है औरों को भी जलाता है, ये डबल काम करता है, इस पर जीत पहन लो आप, ये सभी का कारण है, सारी बीमारियों का भी। तो इसके लिए देख लो, तो अभी तक हमारे अंदर कोई भी एक भी व्यक्ति अच्छा नहीं है, निरोगी नहीं है, भगवान तब आता है तो सारी दुनिया बीमार होती है, सारे बच्चे, तब यहां कोई दवा नहीं है, इस दुनिया में कोई ठीक नहीं कर सकता है, तब सुप्रीम सर्जन को आना पड़ता है। असंभव दुनिया ने कह दिया, अभी कुछ नहीं कर सकता है, होपलेस, तब स्वयं सुप्रीम सर्जन आता है, कि नहीं तो उसके बीच में देखो बहुत धर्म गुरु आए, कोई कोई आया, किसने पैच लगाया, किसने ऑपरेशन किया, किसने और कुछ किया, तो भी कुछ नहीं हुआ, तब सब कुछ सभी बीमार हो गए, तब स्वयं बाबा आके ये दवा देता है। और नंबर वन राजयोग है, ये इतना सहज है, और आप एक दिन करके देखना, आज रात को आप सोएंगे, क्योंकि पुण्य आत्मा पाप आत्मा कहीं लिखा तो नहीं है ना, तो कैसे कह सकते हो आप, स्वप्न बताते मेरे अंदर क्या भरा हुआ है, जब रात को सोते हो किस प्रकार के स्वप्न आते हैं, कहां से आते हो, दिन में तो ये दिखाई देता है वो दिखाई देता है, ये ठीक नहीं ये ठीक नहीं, मैं ठीक हूं तो मैं कौन, मेरे अंदर क्या है, तब कहा मुखड़ा देख ले प्राणी, ये मुखड़ा नहीं, अंदर क्या भरा हुआ है। तो उस बीमारी को मिटाने के लिए शुभ बाबा आया है, तब बाबा ने एक प्रिकॉशन के लिए दवा दिया है, बच्चे दोबारा पहले अंदर है और भरो नहीं, और बचाओ अपने को, दोबारा ना हो, किसी पर नजर गई, किसी ने बहुत दुख दिया है, देखते ही शुभ बाबा यह आपका बच्चा है, इसको आप सद्बुद्धि दे दो, अगर उसने गुस्सा किया, उसने परेशान किया, जरूर किया है, नहीं ऐसा नहीं, लेकिन उसने किया था, लेकिन उसको देखकर मेरे मन में विचार चला, नुकसान किसको है, गलत वो करे और हम अपने मन को पनिशमेंट देवे, अपना मन मैला करके लेवे, ये कहां की चतुराई है, गलत वो करे और हम अपने मन में परेशानी टेंशन में आ जाए, गलत विचार करे, बीमारी का कारण है, इसको समझदारी कहेंगे? समझदार है नहीं, गुस्सा वो करते हैं, गलत वो करते हैं, हम सोचते हैं, तब क्या करें? आप कहेंगे भाई जी दिखाई देता है ना, बहन जी को देखते भाई जी कहेंगे, बहन जी कहेंगे, तो क्या करें? तब बाबा ने दवा दिया, इससे बचने के लिए आंखें बंद करो नहीं, अच्छी तरह से देख लो, मुंह मोड़ो नहीं, किनारा नहीं करो, कब तक किनारे करेंगे? घर में दो ही रहते हैं, ऑफिस में तीन चार ही रहते हैं, कहां जाएंगे आप? संसार छोड़ के कहां जाएंगे? कहीं भी जाओ तो वापस आना पड़ेगा। इसके लिए बहुत अच्छा दयानंद सरस्वती था आर्य समाज का गुरु, तो उसको लगा साधना करने के लिए मैं गया हिमालय पर जाके बैठ गया, तो साधना करने बैठ गया, बार बार एक व्यक्ति सामने आता था, बचपन में उसने एक शब्द एक व्यक्ति को गलत शब्द बोला था, क्योंकि अंदर है, बाबा ने कहा संस्कार बनता है, जो भी काम इस शरीर में आने के बाद जब तक ये शरीर छोड़ते हो, इस शरीर के द्वारा एक एक सेकंड जो भी आप कर्म करते हैं, एक शब्द याद रखना और कुछ नहीं चाहिए, कि मैं शरीर में जन्म लिया, जब तक एक शरीर छोड़ता हूं, कोई भी कर्म करो आप, वो आपके अंदर संस्कार बनता है और वो हमारे दुख और सुख का कारण है। हाँ, उन्होंने गुस्सा किया, उन्होंने परेशान किया, सब कुछ किया, कोई गलत नहीं है, उन्होंने सब कुछ किया, लेकिन मैंने क्या किया? उन्होंने जो किया वो उनके अंदर संस्कार बनता है, उन्होंने कर्म किया, मैं जो कर रहा हूं तो मेरे अंदर इसका संस्कार बनता है, रिकॉर्डिंग हो रहा है, और ये मेरी अमानत है, ये मेरी संपत्ति है, मैं इसको मेरे साथ ले जाएगा। उन्होंने जो किया अच्छा या बुरा वो उनके साथ जाएगा। अगर आप वर्णन करो इन्होंने ऐसा किया उन्होंने ऐसा किया, हाँ किया, आप क्या कर सकते हो? मिटा सकते हो? कुछ कर सकते हो? नहीं, तो बोल के फायदा क्या है? हाँ, कुछ करना चाहते हो तो वो भी करो। उसके लिए भी बाबा ने एक बहुत अच्छी व्यवस्था दिया है। देखो 2006 और 2009 के 2006 और 7 के अवैक्ट मुरली है, 1976-77 के अवैक्ट मुरली, दो मुरलियों में बाबा ने चार प्रकार की विधि बताई, बहुत सुंदर यूज करने के लिए, कि आप कहेंगे व्यवस्था कि दिखाई देता है कि बाबा को कैसे साथ रखो, दुआएं कैसे दे दो। बाबा ने कहा आपके सेंटर में परिवार में, जैसे हमारे परिवार है, इतना सब बैठे हो भाई बहन और एक बाबा है, तो यहाँ आपने अपने आंखों से देखा एक गलत काम कर रहा है, श्रीमत के विरुद्ध कर रहा है, आपने देखा सुना नहीं, आंखों से देखा, तो आप क्या करेंगे? बाबा ने पूछा कोई गलत काम कर रहा है आप क्या करेंगे? जरूर एक या दस लोगों को जरूर बताएंगे। है ना, पूछ रहा कोई गलत कर रहा है, श्रीमत के विरुद्ध कर रहा है और बहुत गलत काम कर रहा है, तो भी आप 10-15 लोगों को जब तक नहीं सुनाएंगे, नहीं उनको भी कैसे पता चलेगा? बता तो देना चाहिए ना। तब बाबा ने पूछा बच्चे आपको बाबा ने राजा बनाने के लिए लाया है। आज भी बाबा ने कहा बच्चे आपको मैं राजा बनाना चाहता हूं और आप वॉचमैन बन रहे हो। कौन क्या कर रहा है, ये क्यों कर रहा है, ये क्या कर रहा है, आप वॉचमैन बनना चाह रहे हो, है ना? चाहे सेंटर हो, चाहे घर हो, चाहे यहां भी हो, हम क्या काम कर रहे हैं? वॉचमैन की ड्यूटी कर रहे हैं। वॉचमैन क्या करता है, कौन क्या कर रहा है, कौन ये क्या कर रहा है, ये क्या कर रहा है, ये सब देख रहे। बच्चे आपको वॉचमैन नहीं बनाया मैंने, आपको राजा बनाने के लिए लाया। दूसरा बाबा ने कहा नहीं बाबा हमारा परिवार है ना, परिवार में कोई गलत करके हम चुप रहे? हाँ बच्चे परिवार के अंदर माँ बाप भी तो है कि नहीं है? हाँ, हम सबका माँ बाप कौन है? नहीं माँ बाप तो ऊपर रहते हैं, उनको कैसे सुनाऊं मैं, मेरा आवाज इधर पहुंचता नहीं है। चलो माँ बाप नहीं है, आपके सामने तो कोई टीचर निमित्त टीचर है? नहीं टीचर तो हमारी सुनती नहीं है। चलो वो भी नहीं है, और क्या कर सकते हो? तो चौथा चीज, चौथी बार बाबा ने बताया क्या आप उसको ठीक कर सकते हो? आप कर सकते हो। हाँ, आप कहेंगे मेरा भाई है, हमारा परिवार है, हम एक बाबा के बच्चे हैं। अगर आपके अंदर हिम्मत है तो उसकी विधि बताइए। अगर आपके अंदर हिम्मत है, मैं उसको परिवर्तन करूं, मैं उसको समझाऊं, सिखाऊं, हमारा है, तो बाबा ने कहा पहले उसकी बहुत महिमा करो। अरे आप तो बहुत अच्छे बाबा के बच्चे हो, आप बहुत अच्छा काम करते हो, रोज ज्ञान सुनते हो, रोज क्लास करते हो, रोज ये करते हो, आप इतने अच्छे हो, इतनी सेवा करते हो, आप बहुत अच्छे हो, पहले महिमा करो। महिमा करने के बाद लास्ट में कहो भाई जी अगर आपको गलत थोड़ा फीलिंग नहीं आती है तो मैं एक बात बताऊं छोटी सी। हाँ बताओ। देखो कल आप इनके साथ बात करते हो, कितने जोर से, कितने गुस्से से बात कर रहे थे आप। लोग कहेंगे अरे ब्रह्मा कुमार हो करके ऐसे बात कर रहे हो। सॉरी मैं दोबारा, मैं समझ नहीं था, मुझे याद नहीं था, तो आपने बताया। अच्छा क्या ये जवाब देगा? नहीं तो वो थोड़ा स्ट्रांग वाला होगा, मैंने गुस्सा किया आपको क्या हो गया, दोनों में से एक जवाब देगा, है ना। दोनों के लिए तैयार होना चाहिए। अगर आपके अंदर विल पावर है, अपना समझते हो, तो बाबा ने ये चार तरीके बताया है। तो ये कौन कर सकता है? जिनके साथ भगवान और भगवान का ज्ञान दोनों चीज चाहिए। एक चीज बताया आपको और एक चीज बताता हूं कि बाबा ने कहा संसार में चलो, सबको देख लो, सभी चाहिए, झाड़ू लगाने वाले भी चाहिए, खाना बनाने वाले भी चाहिए, है ना, हर प्रकार के लोग चाहिए, सभी एक ही जैसे काम नहीं हो सकता, सभी राजा नहीं बन सकते। तो हमारा एक हाथ, एक छोटी सी अंगुली है, एक मोटी है, एक लंबी है, एक ही शरीर के पांचों अंगुलियां, देखो डिफरेंस है। एक ही परिवार में सभी अलग अलग होंगे, ये बाबा ने पहले सिखाया है। बच्चे ड्रामा में हर एक का अपना अपना पार्ट है, वो बजाएंगे। ये अगर समझ लिया आपने, फिर भी मैं क्या कर सकता हूं, मेरा धर्म क्या है, मुझे बाबा ने क्या सिखाया, हम क्या कर सकते हैं, चुप जाए, चुप रहे नहीं, कि चैतन्य है। तो चैतन्य को दबाव नहीं कहा, बच्चे एक काम करो, आप अगर करना चाहते हो, कुछ मदद करना चाहते हो, लेकिन आप कुछ नहीं करना, आपके साथ कुछ भी नहीं है, कंगाल हो गए हम, बहुत जन्म लेते लेते एकदम बेगर बन गए। अब बाबा आया है, बेगर को ही क्या बनाता है। हाँ, तब बाबा ने कहा बच्चे किसी पर नजर गई, आपका हाथ कहाँ जाना चाहिए, कहाँ जाना चाहिए, अपने जेब में नहीं डालना, आपके जेब में अंदर कुछ भी नहीं है, बाबा के जेब में डाल दो। भगवान की अमानत मेरी अमानत हो, क्यों, मेरा बाप है, लेकिन भाइयों के जेब में हाथ नहीं डाल सकते हो। हाँ, वो कहता मेरा कहेगा। शिव बाबा कहता है बच्चे मैं आपके लिए आया हूँ, आपकी सेवा के लिए आया हूँ, कोई भी दिखाई दिया दान करो, कंजूस क्यों करते हो, इतना सहज राजयोग है। और वो एक ही दिन आपको करके देखना, विश्वास होगा, सवेरे से रात तक रास्ते पर चाहे आप इधर हो, देखते चलो संसार में, चित्र से सबको देख लो, देखते मन में क्या विचार आया, अरे माताजी ने घूंघट क्यों ओढ़ा है, आएगा विचार, नहीं आएगा तो नहीं, अरे हमको माताजी को थोड़ी देखना है, बाबा ने कल कहा था बाबा इस आत्मा को शांति की शक्ति दे दो, तुरंत चेंज कर दो, आदत बनी हुई है, तुरंत अपने को पढ़ाओ। अगर ये काम सवेरे से रात तक एक दिन एक घंटे में एक बूंद एक व्यक्ति को दे दो, आप एक एक बूंद इकट्ठा करो, आज रात को आप सोएंगे, देखना कब सोए कब उठे आपको पता ही नहीं चलेगा, कोई चमत्कार नहीं है। मन अगर स्वच्छ है तो गहरी नींद करता है। अगर मन स्वच्छ नहीं है, और इस कलयुग की दुनिया में आपको सभी जगह पर अच्छे दिखाई दिए, देवताएं दिखाई देवे, ये संभव नहीं है। आज ही बाबा ने कहा था यहाँ सभी है, राम भी आए तो रावण भी यहाँ ही है ना, तो सब यहाँ ही है, यहाँ की ही यादगार है। तो ऐसे वातावरण में रहते हुए भी अगर अपने को बचाना चाहते हो तो ये नंबर वन दवा है। ये इसको कहा दुनिया में भी कहते हैं भगवान को साथ लेके चलो, लेकिन जिस दुनिया वालों को भगवान कहाँ है पता ही नहीं है, हमें तो अच्छी तरह से पता है शिव बाबा कौन कहाँ रहता है कैसे रहता है उसके पास क्या क्या है ना, सब कुछ पता, पूरा नॉलेज मिला। शिव बाबा के पास क्या है, सर्वशक्तियां का, कौन सी सर्वशक्तियां है, वो आठ मुख्य शक्तियां है। एक एक को देखते ही एक एक शक्ति दे दो, फिर भी आपने देना बाबा ये आपका बच्चा है, आप इसको शांति की शक्ति दे दो, आप इस बच्चे को सद्बुद्धि दे दो। किसी को देखते अगर मेरे मन में देने की इच्छा आती है कि बाबा जैसे बाप वैसे बच्चे, सन शोज फादर का, तो बाबा ने भी यही काम दिया, बच्चे मेरे जैसे बनो। मैं क्या करता हूं वो आप करो। बाप समान बनना है क्या ना, कि बाबा से मांगो कहा, कहा बच्चे मेरे सवेरे उठकर मेरे से मांगो, मेरे से ये दे दो बाबा, ये शक्ति दे दो, मांगो कहा। नहीं, मेरे समान बनो। मैं क्या करता हूं वो मुझे करना है सारा दिन में। तो इसको कहते हैं बाप को साथ रख के चलना। समझ में आया? संभव है कि कठिन है? तब नाम ही है सहज राज योग है। हम बहुत कुछ करने जाते हैं जो जरूरी है और सिंपल है, सिंपल को छोड़कर टेढ़े मेढ़े रास्ते में जाना चाहते हैं और वो पॉसिबल नहीं है। तो सबसे सहज नाम ही दिया है सहज राज योग। और समझ लिया हमने, ज्ञान में आए मीन समझ लिया, शरीर आज है कल नहीं है, ये अल्प काल के लिए। तो शरीर में जो रहने वाला जो आत्मा है ये तो समझ आया, समझने वाला ही कर सकता है, नहीं तो नहीं कर सकता है। तब कहते हैं दुनिया में वसुधैव कुटुंबकम, कहते हैं हम भगवान के बच्चे हैं, ईश्वर के संतान है, खुदा के बंदे हैं, कहते हैं ना हर एक धर्म वाले कहते हैं। लेकिन कैसे है? शरीर तो नहीं, खुदा का बंदा तो नहीं हो सकता है, आत्मा है। ये बाबा ने हमें बहुत सरल भाषा में सिखाया, बच्चे किसी पर नजर गई ये कोशिश करके देख लो आप, ये पुरुषार्थ है, इसमें फास्ट जाओ कि हर घंटे में मेरा मन कितना पॉजिटिव सोच रहा है। क्या पॉजिटिव सोचेंगे पता ही नहीं, हो नहीं सकता है। कितने लोगों को मैंने दुआ दिया ये तो देख सकते हैं, हमारे सामने एक घंटे में 50 लोग आए, कितने लोगों को, कितने बाबा के बच्चों को दान किया मैंने, कितने को काली भेज दिया, तो ये चेकिंग कर सकते हैं, उससे पता चलेगा। और उसका एक ही दिन में रिजल्ट देखना, रात को सो, एक महीना दो महीना पता नहीं, विश्वास नहीं होता है। मनुष्य को इंस्टेंट चाहिए, तुरंत चाहिए, इंतजार नहीं होता है। तो आप तुरंत एक ही दिन में देख सकते हो, रात को सोते ही देखना, एकदम स्वच्छ मन खाली है, गहरी नींद करता है, तब लगता है अरे आज कब सोए कब उठे पता नहीं चला, गहरी नींद आई। संसार में थे, संसार छोड़ के जंगल में नहीं गए, सबसे मिले देखा भी, लेकिन सबको देखते मिलते हुए भी दुआएं दिया, हरेक के प्रति शुभ सोचा। इसको कहते हैं, अगर हम नहीं सोच सकते हैं, आपको आप सोच सकते हो नहीं, इनको देखते मुझे पता चलेगा कि देखो इन्होंने 2 साल पहले कितना गुस्सा किया था, इसको देखते याद आएगा। मैं नहीं कर सकता हूं, लेकिन मैं बाबा को तो कह सकता हूं, बाबा ये आपका बच्चा है, इसको आप सद्बुद्धि दे दो। अगर दो बच्चे क्लास में आवाज करते हैं, बच्चों को कितना भी कहो बच्चे चुप बैठो, नहीं समझ में आ रहा है, तो माता जी को कहेंगे ना, माता जी आप अपने बच्चों को संभालो, कहेंगे ना, तो माँ बाप के बच्चे सुनते हैं। तो हम सबका माँ बाप कौन है? शिव बाबा है। अगर कोई कुछ करता है ये निर्दोष है, इसके ऊपर दृष्टि नहीं जाएंगे, नहीं तो इतना दिन हमारी दृष्टि इसके ऊपर जाती थी, ये है अब ये नहीं, बाबा ये आपके बच्चे, आपका काम है, आप पालनहार है, आप इनके संभाल करो, इसको ज्ञान दे दो, इनको शक्ति दे दो, इनको सद्बुद्धि दे दो, आपका काम है ये, क्योंकि आपके बच्चे हैं और इसलिए आप आए हो। तो इसको कहते हैं बाप को साथ लेके चलना, इसको भगवान हमारे साथ है। आपको बहुत सारे एग्जाम्पल बताऊं मैं, एक नहीं बहुत सारी है, एक प्रैक्टिकल बताता हूं, अगर भगवान साथ है क्या से क्या होता है। हमारे जीवन में बहुत एग्जाम्पल्स है, एक बताता हूं, मधुबन में ओम शांति भवन बनने से पहले, मधुबन ओम शांति भवन बना नहीं अभी तक, उसके पहले मधुबन के ओम शांति भवन के पीछे एक पहाड़ है, तो उस समय मधुबन में थोड़े से थे, सारा दिन तपस्या ही करना, सेवा बहुत कम थी, हम दिन में 12 बजे के 1 बजे के अंदर खाना खा के सो जाते थे, 3 बजे उठ जाते थे, 3 बजे सीधा उठ करके पहाड़ पर जाके एकांत बाबा कहता था,
बच्चे एकांत में बैठ के तपस्या करो, छत पर जाके तपस्या करो, पहाड़ों पर जाके करो, तो 69-70 की मुरली देख लो आप, तो एकांत में जाके तपस्या में बैठते थे। एक दिन इधर से फुल मून आ रहा था, चंद्रमा आ रहा था, इधर से सनसेट हो रहा था, और हम आते 6 बजे आते थे, दीदी मनमोहिनी थी, तो वो थोड़े से हम 10-12 भाई थे, तो शाम को 6:30 बजे दीदी एक्यूरेट योग करने बैठती थी। अगर एक भी नहीं है, अरे कहाँ गए थे आप, तुरंत पूछेंगे। एक्यूरेट 6 बजे वहां से निकलते थे, 6:30 बजे आके पहुंच गए। एक दिन 7:15 बज गए, आ ही नहीं सके, देखा उजाला है, घड़ी तो नहीं थी उस समय, और थोड़ा टाइम है, इधर से चंद्रमा आ रहा था, और थोड़ा समय के बाद जाएंगे, तो नीचे आते थे 7:15 बज गए, डाउन था, अंधेरा था, इतना छोटा सा रास्ता था, इतने छोटे से रास्ते जाते समय आराम से बाबा की याद में अशरीर का अभ्यास करते थे उस समय, कि बाबा ने कहा बच्चे बाप तो आया हुआ है, बाबा को याद करने की जरूरत नहीं, बाबा को याद कौन करेगा, आप विधेयी बनो, अशरीरी बनो, बाप आया है सामने है, अगर अशरीरी है तो बाबा आपको दिखाई देगा। तो ये उस समय अभ्यास करते थे, जब आते आते एकदम ऐसे आराम से जाते, इतना नजदीक, 1 फुट के नजदीक छोटा सा रास्ता था, इतना बड़ा इधर एक पत्थर था, नजदीक सामने मुझे लगा कि गाय का बछड़ा खड़ा है, बालते, हाँ कोई डर नहीं, आए देखते, लेकिन आंखों से आंखें मिली थी, चमक रही थी आंखें, अंधेरा था थोड़ा सा, एकदम नजदीक पहुंच गया तो इतना विचार आया, ये लायन, शेरनी लायन खड़ा था, इतना बड़े बाल थे, फिर भी कोई विचार नहीं, आराम से देखते देखते आए, नजदीक पहुंच गया, 1 फुट डिस्टेंस पर तुरंत छलांग मार के पत्थर पर खड़ा हो गया, हमें कोई विचार नहीं, डर नहीं, कुछ नहीं, आराम से आए, बहुत 5-10 फुट जाने के बाद देखा पीछे, अरे हाँ लायन था, कोई डर नहीं है। तब कहा भगवान जिसके साथ है, उदाहरण के लिए बताया, प्रैक्टिकल कहानी नहीं, एक कहानी था ये, प्रैक्टिकल इसी जीवन में, अगर साथ है, चाहे आंधी आने दो, तूफान आने दो, चाहे कुछ भी हो, तो आप तब कहते हैं रुई जैसे उड़ा देगा, है ना, एकदम हल्का करता है, पता ही नहीं, विचार भी नहीं, कोई विचार भी आ सकता है, और ये क्या करेंगे, अभी थोड़ा सा डर आएगा, कोई नहीं, थॉटलेस, क्योंकि अशरीरी बन के आ रहे थे। तब दुनिया में चलते हुए आज भी बहुत परिस्थितियां है, घर में बहुत लड़ाई है, सब कुछ है, लेकिन सॉल्यूशन क्या है, पति कौन है, बच्चे किसके, आपके बच्चे आपने लाया था, आप 1 मिनट ज्यादा रह सकते हो, रख सकते हो उसको, नहीं, ये मोह हम कहते हैं मेरा बच्चा नहीं, बाबा आपने मेरे पास भेजा, मैं उसकी सेवा करता हूँ, खिलाता हूँ, पिलाता हूँ, संभाल कर सकते हैं, आपका बच्चा है, आपका पति है ये, आप इसको सद्बुद्धि दे दो, आप इसको समझाओ, मन में उस बच्चे के प्रति बार बार शुभ सोचो, नहीं तो मेरा आता है ना, तो आप करो, आपका पति है, आपका बच्चा है, आप करो। तब कहा ये मूल कारण, मूल मंत्र याद रखना चाहिए, मेरा इस संसार में कोई नहीं है, न बच्चा है, न पति है, कोई नहीं बाबा, ये सब आपके बच्चे हैं, और आपको इनको सुधारने के लिए आप आए, हम नहीं सुधार सकते हैं, हम कुछ नहीं कर सकते हैं। तो इसको कहा भगवान को साथ रख के चलना। ओम शांति। इसी को बाबा ने कहा कि बेफिक्र बादशाह, अगर कोई बच्चा माँ बाप के साथ अगर चलता है तो उस बच्चे को कोई चिंता है, कोई चिंता नहीं, अगर मम्मी पापा के साथ चल रहा है उसको कोई चिंता नहीं, निश्चिंत होकर चलता है। ऐसे ही अगर हम भगवान को अपने साथ लेके इस प्रकार चलते हैं, सदा साथ है, स्मृति में है, सदा उसको उपयोग करते हैं हर सेकंड, तो साथ है, नहीं तो कहेंगे स्मृति में है, स्मृति में और भी कितने लोग आते हैं, अगर बार बार एक एक सेकंड उसको बुलाते रहते हो, उसके साथ संबंध जोड़ते हो, तो बेफिक्र बादशाह है, कोई फिक्र नहीं, क्योंकि बाबा साथ है, माँ बाप साथ है, तो बच्चे को कोई फिक्र नहीं है। तो इसके लिए बाबा ने कहा भगवान को साथ रख के चलो, ठीक है, एक चीज। दूसरी कहा साक्षी होके देख लो, साथी असाक्षी। तो साक्षी कैसे देखेंगे आप, किसी को देखते उसका प्रभाव पड़ेगा, वस्तु, व्यक्ति,
अगर आप इतने समय से आइसक्रीम खाते थे, आइसक्रीम को देखते ही मुंह में पानी आता है। आप कहेंगे नहीं खाना है, पता है आपको बाहर वाले मक्खी बैठी है, दिखाई भी दे रहा है, लेकिन बचपन से खाते आ गए, आइसक्रीम को देखते ही बहुत लोग खा रहे, आपके मुंह में पानी आता है। वी गेट इन्फ्लुएंस्ड, हमारे पर न चाहते हुए मन में दिल में संकल्प उठता है, प्रभावित होते हैं, चाहे वस्तु हो, चाहे व्यक्ति हो, चाहे वैभव हो। किसी ने बहुत सुंदर स्वेटर पहना है, किसी के यहाँ बहुत सुंदर बैच पहना है, देखते ही अरे मुझे भी ऐसा बैच चाहिए, हम प्रभावित होते। किसी के बहुत बहुत सुंदर मोबाइल है, उसको देखते ही आपके अंदर संकल्प आता है, तब साक्षी कैसे होंगे आप? तो उसके लिए भी दो चीजें चाहिए, एक ज्ञान की शक्ति चाहिए और एक योग की शक्ति चाहिए। अगर ये दोनों शक्ति है, जैसे बहुत ठंडी है, आप ठंडी आते हुए ठंडी नहीं लगनी चाहिए, संभव है लगेंगी, तो उसके उससे आप अपना बचाव करते हो, जैकेट पहनते हो, स्वेटर पहनते हो, शाल ओढ़ते हो, आप अपने को बचाते हो। कैसे बचाया? अपने अपने बचाया तो कुछ यूज किया है, बहुत तेज बरसात पड़ रही है तो छाता लेके जाते हो, तो अपने को बचा सकते हो, तो बचाने का साधन चाहिए। दुनिया चमकीली है, माया का पाम कहा, रियल सोना तो नहीं दिखाई देगा, उससे भी चमकीला आपको रोल्ड गोल्ड सोना जो है आर्टिफिशियल वो दिखाई देगा, तो खींचता हर सेकंड। और कारण आकर्षित होने का कारण, हम अंदर से खाली है, सारे क्लब चलते चलते हमारा जेब हम सब कुछ खाली हो गए हैं, छोटा सा कुछ दिखाई देता है आकर्षित हो जाता है, वस्तु व्यक्ति वैभव मान शान सब कुछ उसके लिए हम जी रहे, गलत नहीं है ये। अभी जैसा मनुष्य है जो है वो सत्य है, ऐसा नहीं करो कहना भी अज्ञान है, तो किसी के हाथ में नहीं है, ये परिस्थिति है वर्तमान कि आत्मा जो इतना जन्म लेके आई एकदम कंगाल हो गए, खाली हो गए है, कुछ भी देखता है तो प्रभावित होता है। तो इससे बचने का उपाय क्या है? हम प्रभावित न हो, हमारी स्थिति अचल रहे, बुद्धि किसी के आकर्षण में न आवे, साक्षी होकर के देखे हम, तो उसके लिए कुछ करना पड़ेगा। तो उसके लिए दो हमने देखा अपने जीवन में दो चीजें चाहिए, एक विधि पूर्वक सवेरे आप अमृयोग करते हो सवेरे शाम, तो सर्व शक्तियां है, अगर शक्तिशाली आत्मा को कितना भी कोई हिलाए तो हिला नहीं सकते हैं, कि उसका अपना पावर है, अपने पावर से वो स्थिर रहता है, कितना भी चारों तरफ से हिलाने की कोशिश करे उसके अपने पास विल पावर का, उसको योग बल का। और एक है ज्ञान का बल, कोई नहीं है, मन में वस्तु व्यक्ति किसी को देखते विचार आते हैं, क्योंकि हमने वो चीज खाई हुई है, अनुभव किया हुआ है, बार बार आकर्षित करता है, तो उसके लिए ज्ञान से मन को समझाओ का। बच्चा रास्ते पर ले जाते आप, आइसक्रीम देखा, खिलौना देखेगा, बार बार मांगता रहेगा, कितना भी समझा उसको है ना, तो मम्मी पापा उसको समझाते समझाते ले जाते, तो ये मन भी ऐसे चंचल है, बार बार आकर्षित होता है, तो मन को कैसे कौन समझाएगा? तो दुनिया में नहीं समझा सकते, इसलिए तनाव शब्द आया, कि मैं आपको कहता हूं गुस्सा नहीं करो, अगर मुझे गुस्सा आया तो कौन समझाएगा? सब लोग तंबाकू खाते हैं, शराब पीते हैं, मन को सप्रेस करते हैं। तो यहां बाबा ने आके हमें तीसरा नेत्र दिया, बुद्धि का ज्ञान दिया है, क्योंकि साइंस ने दुनिया ने नहीं दिया ये, तब बाबा ने कहा आज तीसरा नेत्र दिया है। तो बुद्धि, बुद्धि के अंदर जो रोज आप ज्ञान सुनते हो, अगर ज्ञान अच्छी तरह सुना है तो याद है, तो मन में किसी को देखते ही गलत विचार आता है, आइसक्रीम को देखते विचार आएगा, चलो खा लेते आज, तुरंत बुद्धि कहेंगी नहीं आज ही बाबा ने कहा था बच्चे बाहर की चीज नहीं खाने चाहिए, देखो किसने हाथ लगाया, कितनी सफाई नहीं है, गंदगी है, मक्खी बैठती है, क्यों खाना चाहिए, क्या मिलेगा? तो बुद्धि मन को समझाती है, तो मन वस्तु व्यक्ति वैभव के प्रति प्रभावित नहीं होता है। तो मन को प्रभावित अगर साक्षी दृष्टा में उसके प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए, तो ज्ञान अच्छी तरह से चलना चाहिए, और ज्ञान बहुत नहीं चाहिए, तो ज्ञान भी आप कहेंगे रोज आप मुरली सुनते हो, सुनने से कभी भी ज्ञान याद नहीं रहेगा, श्रवण से कभी भी ज्ञान याद नहीं आता है, अवधारणा नहीं होती है। उसके लिए एक काम करना पड़ेगा और वो हम भी करता हूं और आप इतना सहज है, कोई मेहनत नहीं करनी है, सिंपल आप करके देखना। देख लो इंग्लिश में कहते हैं उसको हेल्दी माइंड इन हेल्दी बॉडी कहते हैं, शरीर स्वस्थ होना चाहिए, स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन कहते हैं इंग्लिश में। तो शरीर को स्वस्थ रखने के लिए आप सारा दिन में कितना दफा खिलाते हो? कम से कम 3 दफा खिलाते हो, सवेरे खिलाया, दिन में खिलाया, शाम को खिलाया, आत्मा को कितनी दफा खिलाते हो? 1 दफा सवेरे मुरली सुनी तो शक्तिशाली कौन हो गया? शरीर। शरीर माना 5 विकार है, तो 5 विकार को, क्रोध को अगर रोज खाना खिलाओ तो आपको छोड़ के जाएगा? नहीं, माताजी के घर में 3 दफा खाना मिलता है तो क्यों छोड़ के जाएगा? इसलिए क्रोध हमारे से नहीं जा रहा। तो मैं देखा एक भी माताजी ने हाथ नहीं उठाया, क्यों? कि 3 दफा खाना मिलता है, इसलिए क्रोध छोड़ के जाने की तैयारी नहीं है। फिर आप कहेंगे भाई जी इसका मतलब हम 3 दफा खाना नहीं खाए? नहीं, 3 दफा खा लो, खाने में त्याग नहीं करो, लेकिन उसके साथ आत्मा को भी 3 दफा खिलाओ। तो कैसे खिलाएंगे? 3 दफा सेंटर में आएंगे? नहीं, संभव नहीं है। तो क्या कर सकते हो? सबसे सहज तरीका है, सिंपलेस्ट, कोई मेहनत नहीं, जो सवेरे मुरली सुनते हो आराम से सुनो, 1 मुरली के पॉइंट लो जो आपको अच्छा लगा, आज बाबा ने ये पॉइंट मेरे लिए कहा, एक ही पॉइंट लिख करके जेब में रखना, माताएं डायरी में लिख दो और किचन में सामने रखना। और भाई काम कर सकते हैं, इधर से गए जाते हैं नाश्ता करने बैठते हो और हरेक को 2 हाथ है, 1 हाथ तो नहीं है, ये हाथ जरूर इधर जाता है, ये हाथ क्या काम करता है? खाली है, नाश्ता कर रहे हो, ये हाथ से आत्मा को खिलाओ, आज मुझे बाबा ने क्या कहा था, गुस्सा नहीं करना चाहिए, बस हो गया, खाना अंदर गया, वो अपने आप काम करेगा, हजम करेगा। उसके बाद आप कहिए हजम करो, हजम करने का और कुछ करने की जरूरत नहीं, मनन चिंतन करने के लिए किसी के पास समय नहीं, जाते ये करना है वो करना है, बहुत बिजी है। फिर दिन में खाना खाने बैठते हो, खाना सामने आते ये हाथ इधर नहीं जाता है, ये हाथ इधर गया, ये हाथ क्या कर रहा है? दोबारा खिलाओ। रात को फिर खाना खाने बैठते हो, खाना आते ही मुरली ढूंढने जाओ, डायरी कहाँ है पता ही नहीं है, बाद में देखेंगे, नहीं साथ होना चाहिए, जेब में रख दो, खाना आया इधर गया, ये हाथ दोनों का 2 हाथ दिया है, 1 हाथ से आत्मा को खिलाओ, 1 हाथ से शरीर को खिलाओ। माता भी डायरी लिख के किताब में लिख दो, डायरी पर किचन में रख दो, खाना खाना बैठते हो पढ़ो, खाना खाने बैठो, दिन में सवेरे शाम को, नहीं तो एक ही शरीर है, सवेरे खाना खाया था शाम को क्यों खिला रहे हो? 2 शरीर तो नहीं, 2 पेट तो नहीं। हाँ, शरीर को 3 दफा चाहिए तो आत्मा को भी 3 दफा नहीं खिलाया तो जरूर गुस्सा आएगा। शरीर को खाना नहीं खिला, उसको भूख लगती है, चूहे है ना, भूख लगती है अंदर, तो इसलिए आत्मा को भी 3 दफा चाहिए। सिंपल तरीका, कोई मेहनत करने की जरूरत नहीं, बहुत पढ़ो चिंतन करो, संभव नहीं आज की दुनिया में, लेकिन ये संभव, इसके लिए एक्स्ट्रा कुछ नहीं करना, सुनते हो एक लिख के लगो, क्यों? नॉलेज मस्ट बी अलोंग विथ यू, ज्ञान आपके साथ रहना चाहिए, धन है। मार्केट में जाओ सब्जी ले लो, पैसे बाद में देता हूँ चलेगा? नहीं, पैसे दे दो, सामान ले लो। तो ज्ञान सदा साथ, ये धन है। एक मुरली के पॉइंट कल सवेरे निकाल के फेंक दो, दूसरा डाल दो, एक पॉइंट आपने 3 दफा अपने को आपको सिखाया तो आप देखना अंदर ही अंदर चिंतन चलता है। और इसके 5 तरीके हैं, लेकिन आपको एक ही तरीका सिखाता हूँ, ऐसे और भी तीव्र पुरुषार्थ करना चाहते हो, ज्ञान और भी, बाबा ने कहा ये धन है, दान करो, तो बहुत तरीके हैं इसमें, लेकिन सिंपल एक तरीका, और एक सिंपल बताता हूँ, चाहे तो और फास्ट जाना चाहते हो आप, आज के दुनिया में आप सबके पास मोबाइल है, मोबाइल से कितने लोग सारा दिन में आपको बात करते हैं? हाँ, बात करो, 1 घंटा बात करो, लेकिन किसी ने अगर बाबा के बच्चों ने फोन किया, बात किया, बात करते करते ये हाथ से, ये हाथ से तैयार रखना, जैसे बात हो गई भाई जी हो गया, हाँ आज देखो पढ़ के बताना, आज देखो बाबा ने बहुत अच्छी बात बताई थी, याद नहीं रहता, पढ़ करके बताओ, तो जो उन्होंने संसार समाचार नेगेटिव सुनाया, ये पॉजिटिव आपके मुख से वर्णन हुआ, साफ हो गया। कर्म करते समय डांट पड़ता है कपड़े का, तुरंत निकालो तो चला गया। तो पॉजिटिव शुभ विचार हमारे साथ होना चाहिए। कहां से लाएंगे आप? रोज एक पॉइंट मुरली का जेब में रख दो, फोन करो, बात करो, करना है संसार में व्यवसाय, सब कुछ करना है, करो। करते हुए अगर वो बाबा का बच्चा है तो कहना आज बाबा ने ये कहा था, अगर बाबा का नहीं है और कोई है तो उसको कहना कि भाई जी हो गया, आज मैंने किताब पढ़ा था, बहुत अच्छी एक बात थी, आपको बताओ। हाँ बताओ। उसको कहना गुस्सा करने से क्या होता है, शरीर पर क्या प्रभाव पड़ता है, बाबा का नाम नहीं लेना। अभी हम पता करें किसी को फोन पर आज ट्रेन में एक्सीडेंट हुआ, आज ये हुआ, आज टीवी में ऐसा कहा, सुनाते हैं ना समाचार, तो सुनाते हैं। तो वो समाचार ईश्वरीय समाचार सुनाओ, पॉजिटिव शुभ शुभ विचार दे दो। तो कहां से लाएंगे आप? याद नहीं रहता उस समय, हम औरों के प्रभाव में आते हैं। उस प्रभाव से बचना चाहते हो तो मुरली के एक पॉइंट आपके पास, माताएं भी कर सकती है, घर में टेलीफोन के बाजू में ही रख दो डायरी, फोन उठाया तो डायरी पढ़ते देख करके तुरंत बता सकते हो। सब साधे दस सहज ऐसे पांच तरीके हैं, लेकिन ये दो तरीके आप कर सकते हो। तो ज्ञान अगर आपके, तब कहा ज्ञान ये संजीवनी बूटी है, लेकिन किसी को देखते ही, किसी का कुछ आवाज सुनते ही बेहोश हो जाते हैं, अर्थात वी गेट इन्फ्लुएंस, हम प्रभावित हो जाते हैं। तो वो प्रभाव से कैसे बचे, कैसे हम स्थिर रहे, तो उसके लिए कुछ बचाव का साधन चाहिए। ये बचाव का साधन है, आप उस समय उसके प्रभाव से, कोई एक्सीडेंट होता है, कोई नजदीक वाला मर जाता है, और कुछ होता है, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी बात सुनते हुए भी, हाँ सुनना तो पड़ेगा, सुनते ही बाबा की मुरली पड़ी, आज बाबा ने कहा था, बच्चे सब कुछ ड्रामा है, ड्रामा आपसे सब करता है, ड्रामा में खेल है। उसी समय ये विचार, शुभ विचार कहाँ ढूंढेंगे आप? आपके साथ रहना चाहिए, जेब में। ये एक लाख रुपए का नोट है, सदा आप जेब में एक मुरली के पॉइंट साथ रखो, घर से बाहर निकलते ही देखना मेरे जेब में पैसे है, मुरली का एक पॉइंट है, पैसे नहीं तो चलेगा कागज का नोट, मुरली का एक पॉइंट रख करके जाओ, सदा साथ रखो एक पॉइंट, कल सवेरे दूसरा डालो, रोज रोज नए लेना। ऐसा नहीं एक साल से एक ही मुरली रखी वही पढ़ते हैं हम, नहीं, रोज रोज बाबा नया नहीं देता, तब आपका मुरली के ऊपर भी इंटरेस्ट आएगा कि आज बाबा नया क्या सुनाएगा, नई नई पॉइंट चाहिए, बहुत ध्यान से सुनेंगे, आज नई चीज कुछ खाना चाहिए, तो मुरली पर भी आपका इंटरेस्ट बना रहेगा। रोज ढूंढेंगे हम नया क्या सुनाया है, नया पॉइंट लिखना है, नया पॉइंट औरों को सुनाना है। तो ये जो साक्षी अवस्था चाहते हो अपने अपने होंगे, ये करो ऐसा अपने, जो सहज संसार में रहते हुए हम बाबा के बच्चे क्या कर सकते हैं। एक परिस्थिति आती है, किसी कोई ऐसा व्यक्ति नहीं जिसको परिस्थिति नहीं आती है, हर एक के पास परिस्थिति आती है, और उस समय आपको बेहोश कर देती है, प्रभावित कर देती है। तो उधर उस प्रभु का प्रभाव मेरे न पड़े, साक्षी होके रहो मैं, तो उसके लिए ये एक ज्ञान का पॉइंट रहना चाहिए। दूसरा, कभी कभी आप देखना कि याद आता है सामने वाला बहुत जोर से बोल रहा है, परेशान कर रहा है, इंसल्ट कर रहा है, सबके सामने निंदा कर रहा है, याद आता है बाबा ने कहा था बच्चे चुप रहो, सहन करो, याद आता है, विचार आता है, लेकिन ब्रेक लगता नहीं है, न चाहते शब्द निकल जाता है, फिर कहते हम चाहते रहते, याद भी था लेकिन मुख से निकल गया, क्यों? पावर नहीं था। तो रोज विधि पूर्वक आधा घंटा, एक घंटा भी नहीं चाहिए, आज हमारी कैपेसिटी 15 मिनट, आधा घंटा हम बैठ सकते हैं आराम से, अगर विधि पूर्वक रोज 15 मिनट, जो बाबा ने कहा कि बच्चे आपका 100% बाबा से प्यार है, लेकिन फिर भी बच्चे विकर्मों का बोझ को उतारना चाहते हो तो ज्वाला स्वरूप स्थिति चाहिए। और आप जानते, एक कागज धूप में रख दो, आप निरंतर सूर्य की किरणें पड़ती हो, कागज कभी भी जलता नहीं है, सारा दिन पड़ा हुआ है धूप में, नहीं जलता है, लेकिन वही कागज, वही सूर्य की किरणें, और एक ग्लास का टुकड़ा पकड़ो, अगर आपका हाथ हिलता नहीं है, सूर्य की किरणें उस ग्लास के द्वारा उस कागज पर एक जगह पर एकाग्र करते हो, एक ही मिनट के अंदर कागज जल के भस्म होता है। कोई जादू नहीं है, चमत्कार नहीं, कोई भी आप भी कर सकते हो। तो वही बाबा ने कहा राजयोग, जो ज्वाला स्वरूप कहा, वो भी क्या कि बाबा ने सुना मन और हम योग क्यों कर रहे हैं, हमारे संस्कार है जो आप कहते न चाहते हुए आता है कि अंदर भरा हुआ है, कल हमने गुस्सा किया था, अंदर संस्कार है उसको मिटाना है। और शुभ बाबा कौन, उसने कहा मैं पतित आत्मा को पावन करता हूँ, आपके बच्चों को नौकरी देना दिलाने नहीं आता, आपकी बीमारी ठीक करने नहीं आता हूँ मैं, वो तो डॉक्टर करेगा, मैं पतित आत्मा को पावन करने आता हूँ। पाप कटेश्वर कहा, तब आत्मा के अंदर पाप है उसको मिटाने के लिए ज्वाला स्वरूप चाहिए कहा। तो इसमें योग बल चाहिए, जब भी आप योग में बैठते हो यहाँ से परमधाम तक मन और बुद्धि दोनों तार अगर उधर जोड़ते हो तो करंट आएगा, एक तार जोड़ो तो बल्ब जलेगा, आपको मैंने तार जोड़ा है, दो तार चाहिए, मन और बुद्धि ये दो पाव है आत्मा के, ये दोनों पाव से यात्रा करो का। तो कैसे करें, बहुत सहज है, अगर भाई जी को देखते ही मैं बात कर रहा हूँ तो इधर उधर आप देख ही नहीं सकते, इधर माता जी को देख ही नहीं रहा हूँ, खाली है, खाली माता जी क्या करती, इधर देखती है उधर देखती है, खाली व्यक्ति भटकता है। तो अगर योग में बैठते हुए बुद्धि इधर उधर जाना नहीं चाहिए, दूसरे विचार नहीं आना चाहिए, नहीं तो हमारे पास दो है, एक मन सोचता है, एक बुद्धि के अंदर पुरानी बातें स्मृति में आती है, जागृत होती है, याद आती है। तो ये दोनों को बाबा ने कहा जोड़ दो। तो कैसे जोड़ेंगे, सहज आराम से बड़े बाबा ने शब्द बताया, अपने आप को अपने से बात करो और बाबा से बात करो, आत्मा समझ के बाबा से बात करो। कैसे करेंगे, बाबा मुझे ये दे दो, मुझे वो दे दो, बाबा के पास कुछ है, कुछ नहीं, सर्वशक्तियां है। तो योग में बैठते हो सवेरे 15 मिनट बैठो, शाम को 15 मिनट, ज्यादा भी नहीं चाहिए, आराम से बैठो आंखें खोलकर और अपने आप से बात करो। पहले मन बुद्धि से बात करना, मन बुद्धि को एक करना पड़ता है, नहीं तो मन एक सोचता है मैं आत्मा हूं ज्योतिर्मिलो, अरे आज इसको फोन करना था, कौन कहता है, बुद्धि खाली है तो इधर उधर जाती है। तो इन दोनों को एक करना चाहिए, इसलिए योग में व्यर्थ विचार क्यों आ रहा है, अपने अपने था, खाली तो विचार आएगा, तो इन दोनों को एक करना चाहिए। आराम से बैठो, मैं कौन, तुरंत बुद्धि जवाब देती है मैं ये हूँ, फिर मेरा रूप, तुरंत बुद्धि जवाब देती है मेरा रूप है। जैसे भारत में एक हाथ से नमस्ते नहीं करते, दो हाथ जोड़ते हैं, दो हाथ जोड़ने को नमस्ते नहीं कहते, विधि है, छोटी अंगुली को लगनी चाहिए। तो मन प्रश्न करता है मैं कौन, तुरंत बुद्धि जवाब देती है, याद है बुद्धि को, मेरा रूप, तुरंत बुद्धि जवाब देती है, मेरे गुण, मेरे सात गुण है, रोज अपने गुणों को जागृत करो, याद करो मेरे ये गुण है। फिर मेरे कर्म, मैं इस शरीर के द्वारा कर्म करता हूँ। पांचवा, मैं कहाँ से आया, परमधाम से आया। परमधाम में कौन है, शुभ बाबा है। कौन है वो, उनकी आठ शक्ति है, एक एक शक्ति ले लो। शुभ बाबा शांति का सागर है, हमारा बाप कभी भी गुस्सा नहीं करता हूँ, लेकिन मैं सारा दिन में कितना समय गुस्सा करता हूँ, बाप क्या कर रहा है मैं क्या कर रहा हूँ। तो बाबा देख लो, बाबा आप क्या करते हो मैं क्या करता हूँ, कोई कहेगा मुझे देखकर ये भगवान का बच्चा है, पूछ लो मुझे बाबा जैसे बनना है तो मुझे बाबा के सामने प्रतिज्ञा करो, बाबा आज के बाद मैं गुस्सा नहीं करूंगा। बाबा क्या करता है, दुख हरता है, सुख करता, मैं कितने लोगों को दुख देता हूँ सुख देता हूँ। तो एक एक शक्ति ले लो और कंपेयर करो, बाप क्या करता मैं क्या करता हूँ। अभी इधर बैठे हो आप, सूर्य बाहर आया हुआ है, सूर्य की किरणें आपको लगती है, लगती है नहीं, क्यों, छत के अंदर बैठे हो, हल्की सी गर्मी होती है, पसीना नहीं आता है। ये कमरा हॉल छोड़ के 5 मिनट बाहर खड़े हो जाओ, सूर्य की किरणें आपके ऊपर पड़ती है, आप चावल नहीं चाहो, 5 मिनट के अंदर पसीना बहने लगेगा। ये सूर्य शरीर का पसीना निकालता है, और वो सूर्य किसका पसीना निकालता है, आत्मा का पसीना निकालता है, लेकिन आत्मा शरीर के अंदर है, उसको बाहर लाओ। कैसे लाएंगे, शरीर को बाहर लेके गए, आत्मा को बाहर लाएंगे तो हो गया खत्म। तो आत्मा को बाहर लाना अर्थात ये या बैठ करके याद करो, मैं कौन, मेरा रूप, मेरे गुण, मेरे कर्म और मैं कहाँ से आया। परम धाम, परम धाम में कौन रहता है, शिव बाबा क्या करता है, मैं क्या करता हूँ, बाबा से बात करो, सर्व शक्तियों से कंपेयर करो। ये अगर रोज आप 10-15 मिनट करते हो तो देखना दिन प्रतिदिन, रोज चाहिए, सवेरे 15 मिनट करो, शाम को करो, एक एक घंटा, दो दो घंटा। बहुत खाने से मोटा नहीं बनता है, थोड़ा सा खा लो, विधि पूर्वक खा लो। अगर रोज 15 मिनट सवेरे शाम को करते हो, रोज विधि पूर्वक, नहीं आज खाना ही नहीं खाया था, ऐसा होता है, बहुत बिजी थे, नहीं खाना तो शरीर को चाहिए, तो आत्मा को भी खाना खिलाना पड़ेगा ना, कि नहीं चलेगा। अगर खाना नहीं खिलाएगा जरूर उसको गुस्सा आएगा, तो उसको भी रोज खाना खिलाना चाहिए। तो ये अगर आप करते हो रोज, देखना थोड़े एक महीना रोज करो, देखना कितना भी कोई गुस्सा करता है, गलत शब्द बोलता है, आप चाहते हुए भी गुस्सा आएगा नहीं। इसको कहा कि आप औरों ने कितना भी आपसे गलत व्यवहार किया, गलत बोला, आपके अंदर से गलत निकलेगा नहीं, आप बचेंगे, आप उनके व्यवहार से, बोल से, कर्मों से प्रभावित नहीं होंगे। तो उसको कहा आपकी स्थिति अचल, हलचल में नहीं आएंगे। तो इसको कहा साक्षी होकर के आप देख, हाँ वो बोल रहा है, गुस्सा कर रहा है, गलत शब्द बोल रहा है, आप देखते रहेंगे, मुस्कुराते रहेंगे, हाँ देखने दो। तब बाबा ने कल कहा था ग्लानी करने वाले को भी गुणों की माला पहनाओ, पहना सकते, कहना सहज है, संभव है। अगर किधर रस्ते पर अभी जाते रहते, माताजी का चप्पल दूसरों किसी ने पहन लिया, माताजी कहेंगी देख लिया, माताजी चुप रहेंगी, अरे माताजी आपको दिखा नहीं देता है क्या, गलत तुरंत शब्द निकलेगा, ज्ञान यहाँ का यहाँ ही रह गया, है ना। ये वो सत्संग नहीं है जो दुनिया में थोड़ा सा यूज करो, थोड़ा यूज करो, हाँ बाबा ये पुराना चप्पल था माताजी पहन गए, आप मुझे नया दे देना। और देखना बाहर जाते ही अगर आप ये सोच लो, बाबा आपको अपने आप नया चप्पल ला के देगा। किसी ने किसी ने माता जी खाली पाव जा रहे हो, ये ले लो नया चप्पल ला के देगा। देखना एक व्यक्ति किया, इधर एक बाबा के कमरे में एक व्यक्ति बाहर का था, न्यू बूट पहन के आया था विदेश से, बाबा के कमरे में गया, बाहर आया तो बूटी नहीं है। उसने कहा चलो भगवान ने मेरा बूटी लिया, भगवान के घर में आया ले लिया, को हर जाने, खाली नंगे पाव जा रहा था खाने पर। किसी एक व्यक्ति ने देखा, अरे बहुत सूट बूट पहने एक व्यक्ति खाली पाव जा रहा है, उन्होंने तुरंत उसको एक चप्पल स्लीपर ला के दिया, भाई जी ये चप्पल पहनो। तो आप नहीं, हमने बाबूदर गया था कोई लेके गया, को हर जाने, बाबा ने आपको भेज दिया है। तो भगवान बच्चों का संभाल करता है, लेकिन कभी अगर आपके मन में आपके साथ उस समय बाबा था तब, और नहीं तो आपके मन में विचार चलते कौन लेके गया, देखो बाबा के घर में भी ऐसे होता है, ये होता है, ये उचार आया, तब कहा भगवान अगर साथ है तो को हर जाने। बाबा को देख के बाहर आए, बाबा को अंदर, बाबा आप अंदर ही बैठना, हमारे साथ नहीं आना, है ना, तो उधर छोड़ देते हो आप, नहीं साथ लेके चलो, ठीक है। तो ये दो चीजें चाहिए, मतलब ज्ञान को व्यवहार के रूप में लाओ, नहीं तो बहुत बड़ी बड़ी चीजें हो नहीं सकती है। हम संसार में रहते हुए साधारण व्यक्ति है बिल्कुल, क्योंकि बहुत जन्म लेते लेते आए हैं, बहुत कुछ कर नहीं सकते हैं। तो सिंपल बाबा ने इतना सहज करके बताया कि बच्चे सहज राजयोग का कुछ नहीं करो आप। अगर आप कहते हम तपस्या नहीं करते, नहीं करो, लेकिन औरों को देखते ही शुभ सोचो, उसके लिए भी सोच तो जरूर रहे हो आप, लेकिन इसके बदले ये सोचो, बस इतना ही, नहीं सोचो नहीं कहा, सोचना जरूर है, मन को दमन नहीं करो, मन को पढ़ाओ, इसके बदले आप ये सोचो। और ये पहले से पढ़ाना चाहिए, अपने आप नहीं आएगा, सुनने से आचरण में नहीं था, सुनने के बाद आप आराम से बैठो और सोचो, अपने को पढ़ाओ, मुझे आज क्या कहा था, अमृत योग में बैठते क्या करने के लिए कहा था, कौन से 5 प्रश्न थे, वो फिर से रिपीट करो, रिवाइज करो, तब आपके अंदर याद रहेगा, उसको कहेंगे रिकॉर्ड हो गया है, समझ में आ गया। फिर कहा चलते फिरते क्या करो, वो आपने खाना खाते, अभी जाएंगे आपस में बात करेंगे तो कुछ नहीं, बिल्कुल साइलेंस में जाओ, खाना खाते खाते, अरे मुझे भी अब बाबा ने सवेरे खाना खिलाया था, क्या खिलाया था याद करो, इसको कहते बाबा के याद में खाना खाना। मुरली सुनी यहां छोड़ के चले गए, लेके जाओ, खाना खाते ही मुंह का मुंह में खाना जा रहा है, आत्मा को भी खाना खिला। बाबा ने मुझे क्या सुनाया था आज? इसको कहते बाबा के याद में खाना खाना, सिर्फ बाबा ओम शांति इतना नहीं। तो एक दो पॉइंट मुरली के आना चाहिए, आज बाबा ने मुझे ये कहा था, आज बाबा ने ये कहा था। तो याद करते खाते हो, कर्म करते हो, सब्जी काटते हो, खाना कर्म करते हो, तो जो सवेरे मुरली सुनाई उसका चिंतन चलता है, तो उसको कहते हैं श्रेष्ठ कर्म। कर्म तो कर रहे हो, श्रेष्ठ कर्म चाहिए। ठीक है, ओम शांति।